इस बुलेटिन में, प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने किए महत्वाकांक्षी जलवायु परिवर्तन दस्तावेज पर हस्ताक्षर, भारत में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी, 2035 तक मेलबर्न में ही रहेगा ग्रैंड प्री। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के एक नवीनतम संस्करण पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल के फेडरल चुनाव अभियान के दौरान लेबर के वादों के अनुसार ये दस्तावेज 2030 तक ऑस्ट्रेलिया के कार्बन उत्सर्जन में 43% की कटौती के साथ साथ 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने उद्योग के हितधारकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। उनका कहना है कि ये नीति व्यवसाय के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छी है।
What business has been crying out for is investment certainty. The certainty that they need to invest over a longer time frame than the political cycle of 3 years, let alone the cycle that dominated the former government's thinking, the 24-hour media cycle.
प्रधानमंत्री ने कहा है कि फेडरल संसद अगले महीने फिर से शुरू होने पर इससे जुड़े प्रासंगिक कानून पेश किए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की अगली बड़ी बैठक इस साल के अंत में इजिप्त में होने वाली है। फेडरल ऊर्जा मंत्री क्रिस बाउन को भरोसा है कि आज रात देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के लिए चेतावनी जारी होने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई लोग ब्लैकआउट से बच सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स में लोगों से कहा जा रहा है कि वे बिजली ग्रिड से दबाव हटाने के लिए शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें। यह पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट ऑपरेटर यानी AEMO ने अगली सूचना तक अधिकांश राज्यों में बिजली के थोक बाजार को निलंबित कर दिया है। इस निर्णय से बिजली नियामक पूर्वी तट के पावर ग्रिड की सारी बिजली सप्लाई अपने नियंत्रण में ला सकेगा। श्री बावन का कहना है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा कि ब्लैकआउट ना हो।
So far we have successfully avoided any blackouts and any load shedding. The New South Wales grid will be under significant pressure between 6 p.m. and 8 p.m. tonight. Everybody is working all day to try and avoid load shedding this evening. I'm very confident we can avoid blackouts. We'll be working very hard to avoid load shedding. AEMO and the New South Wales Minister, Mr. Keane, have asked people, nothing essential should be turned off, nothing that's necessary for heating, but if you have a choice about when to run some certain items, don't run them at 6 to 8.
प्रदेश ऊर्जा मंत्री कल यानी 17 जून को राष्ट्रीय कैबिनेट की बैठक के लिए आज कैनबेरा पहुंचेंगे। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 3.9% पर स्थिर हो रही है। अर्थशास्त्रियों ने यह दर 3.8 से 4% के बीच रहने की संभावना बताई थी। ये गिरावट 1974 के बाद से अपने निम्नतम बिंदु पर आई है। युवा बेरोजगारी दर भी 8.8% पर स्थिर रही है। अपनी भूमिका में पहला भाषण देते हुए आज प्रवास मंत्री ने घोषणा की है कि फेडरल सरकार नस्लीय और सांस्कृतिक विविधता पर डेटा एकत्र करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। उन्होंने कहा कि ये डेटा जन्म के देश और मूल भाषा से इतर और बारीक जानकारी एकत्र करेगा। मेलबर्न में फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटीज काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मेलन में बोलते हुए एंड्रयू जाइल्स ने एक राष्ट्रीय नस्लवाद रोधी रणनीति बनाने और ऑस्ट्रेलिया की प्रवासन बहस के स्वर को बदलने का वादा किया। 2019 के बाद पहली बार होने वाला ये सम्मेलन आज और कल यानी 16 और 17 जून तक चलेगा। विक्टोरिया में अपराध की दर 2015 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। राज्य की क्राइम स्टैटिस्टिक्स एजेंसी के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च में पूरे हुए एक साल तक अपराधों की संख्या 11.5% से घटकर 4,70,400 हो गई, जबकि जनसंख्या के प्रति व्यक्ति अपराधों की दर में समान दर से गिरावट आई है। अधिकारियों का कहना है कि इस कमी का मुख्य कारण मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कोविड-19 प्रतिबंधों से संबंधित निर्देश भी थे। संपत्ति और धोखे के अपराधों में 6% की गिरावट आई, जिसमें घरों में चोरी की वारदातें पिछली बार से 600 कम थी और डकैती एक दशक में अपने निम्नतम स्तर पर थी। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी सरकार पर मानवाधिकारों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को छोड़ने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने मध्य पूर्व की यात्रा के दौरान सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ये मुलाकात अमेरिका के उस वादे का उल्लंघन है जो उन्होंने 2018 में तुर्की में सऊदी एजेंटों द्वारा विद्रोही पत्रकार जमाल हुसौजी की हत्या के बाद विश्व से किया था। अमेरिका ने उस समय वादा किया था कि वह सऊदी अरब को अलग थलग कर देंगे। वॉशिंगटन में सऊदी दूतावास के बाहर एक सड़क का नाम बदलकर जमाल हुसौजी वे कर दिया गया है। इसके अनावरण पर नोबेल पुरस्कार विजेता तवक्कल कामरान ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन का व्यवहार शर्मनाक है। डॉन डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ संगठन से अब्दुल्ला अलाउद ने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, हुसौजी की विरासत बनी रहेगी।
Our message today is that we will not move on. Jamal's legacy will live on, no matter the normalization efforts. And this event today is just one way that we will fight to honor Jamal's legacy.
तुर्की का कहना है कि स्वीडन का नाटो में शामिल होने का मौजूदा आवेदन मानकों को पूरा नहीं करता है। यूक्रेन पर पड़ोसी रूस के आक्रमण के बाद स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने नाटो में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन नाटो के सदस्य तुर्की ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है। इसके मुख्य कारण स्वीडन का कुर्द आतंकवादियों के लिए समर्थन और पूर्व में तुर्की को किए जाने वाले हथियारों के निर्यात को रोकना है। नाटो में किसी नए सदस्य के शामिल होने के लिए सभी पूर्व सदस्यों की हामी आवश्यक होती है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चावुशोल्लू का कहना है कि स्वीडन को टर्की की मांगों को पूरा करना होगा।
NATO'dan da aynı şekilde ortak bir uzlaşı belgesi geldi.
We received a joint document from NATO. Also, we received a document from the Swedish Prime Minister's advisor. We had told NATO and other countries that those documents fall way short of meeting our expectations. Now we are going to wrap all those documents and send them our response. We had told the General Secretary of NATO for there to be a base for negotiations, it has to be with the document that we had sent them.
Dün de bugün de Genel Sekreter'e de söyledik.
और अब खबरें भारत से। भारत में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने के बाद झारखंड के लोकसभा सांसद विजय हंसदक ने बुधवार को पुष्टि की कि बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए शरद पवार के अलावा दो और नामों का उल्लेख किया है। सांसद विजय हंसदक ने ANI को बताया कि ममता बनर्जी ने शरद पवार के अलावा दो और नामों का जिक्र किया, जिनमें फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम शामिल हैं। हालांकि इन दोनों नामों पर पार्टी के किसी अन्य नेता ने इस बैठक में कोई राय नहीं व्यक्त की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार दूसरी बैठक की तैयारी करेंगे, जो जल्द ही होगी। विजय हंसदक ने नए नामों का स्वागत करते हुए बताया कि अगली बैठक में इस पर विचार जरूर किया जाएगा। उन्होंने कहा, बैठक में पार्टी के अधिकांश प्रमुख नेता शामिल नहीं थे, इसलिए शरद पवार को छोड़कर किसी अन्य नाम पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। पार्टियों के शीर्ष नेता के साथ चर्चा के बाद ही सहमति बनने की उम्मीद है। दूसरी ओर, भारत में पिछले 24 घंटों में 12,213 नए COVID-19 के मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में COVID-19 से 7,624 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी दर वर्तमान में 98.65% है। और अब मुद्रा की जानकारी। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 70 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54.86 रुपये हो गई है। ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला वन ग्रांड प्री कम से कम 2035 तक मेलबर्न में ही आयोजित होगा। विक्टोरियाई सरकार ने इस आयोजन की मेजबानी के करार को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये आयोजन 1996 से मेलबर्न में हो रहा है। विक्टोरिया के खेल मंत्री मार्टिन पाकुला का कहना है कि सरकार को पूरा यकीन है कि वह करदाताओं के पैसों का उत्तम उपयोग कर रहे हैं।
We have driven a hard bargain in the face of extraordinary competitiveness, and we are absolutely 100% convinced, given the massive increase in global interest of Formula One.
सरकार ने अर्नस्ट एंड यंग फर्म के हाल ही के आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन का हवाला दिया है, जिसका अनुमान है कि इस साल के ग्रैंड प्री ने विक्टोरियाई अर्थव्यवस्था से $92 मिलियन का खर्चा कराया और राज्य की कुल कमाई को $171 मिलियन तक बढ़ाया। आपको बता दें कि ये आयोजन आमतौर पर मार्च में आयोजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष फॉर्मूला वन के कैलेंडर में होने वाली सबसे पहली रेस में से एक होता है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में बारिश की संभावना रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। एडलेड में आंशिक बादल के साथ न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहेगा। मेलबर्न में भी कल बारिश की संभावना है और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहेगा। कैनबेरा में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 4 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहेगा। सिडनी में बारिश की संभावना रहेगी और न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 19 डिग्री रहेगा। ब्रिस्बेन में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में आंशिक बादल के साथ बारिश भी हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के ये समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।